भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
और इस अध्याय का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हम पिछले दो सेटिंग से ले रहे हैं। आज इसका भाग तीन रहेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जिस किसी को भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम प्राप्त करना है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो और पुनर्जन्म या जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को उसे न केवल जानना है बल्कि तत्वतः जानना है। तो इस पूरे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो पिछली बार हमने दोनों श्लोकों का संबंध श्लोक क्रमांक 8 जिसमें भगवान अपने अवतरण के पश्चात वो क्या करते हैं इसकी व्याख्या उन्होंने की, और आज के श्लोक में संबंध पिछले श्लोक से ये है कि सर्वसाधारण व्यक्ति को भगवान के अवतरण का क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो भगवान भगवद गीता में जो भी ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं वो हम सबको इस भौतिक संसार में ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इसलिए कैसे इस भौतिक संसार में हम ऐसे दिव्य ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अपना सकें इसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। इसलिए आज का जो श्लोक है जिसमें भगवान ये तो बता रहे हैं कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं और ऐसे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः जानना है, परंतु जाना जा सकता है, घबराइए मत। कई बार हमको लगता है यदि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं तो जानना मुश्किल है, तत्वतः जानना असंभव लगता है। भगवान कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान इस प्रकार से ये लीलाएं किए हैं कि उन लीलाओं के अंदर भगवान ने अपनी सर्व आकर्षक शक्ति दे दी। तो चाहे कोई असाधारण हो चाहे कोई सर्वसाधारण, सभी को आकर्षित करने के लिए भगवान कि लीलाओं में वो शक्तियां हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारी दो सेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। पिछली बार आपको याद है कृष्ण जन्म की दिव्यता के पांच पहलू हमने ये मुद्दा लिया था, कुछ याद आ रहा है? जनन, वर्णन, वंदन, सांत्वन और गमन। तो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं हैं, और शुरुआत दशम स्कंद की होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। तो पहले के दो तीन चार अध्याय हैं उसमें ये पांच पहलू, अगर ये कोई पूछे हमसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य कैसे है, तो संक्षिप्त रूप में ये पांच चीजें बता सकते हैं। जनन का अर्थ है जन्म, जन्म के पश्चात वर्णन। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, केवल गोकुल वृंदावन का नहीं बल्कि कंस के कारागृह में जो भगवान अद्भुत रूप से अवतरित हुए और अपने सारे आयुधों के साथ, शंख चक्र गदा पद्म, और वसुदेव और देवकी, इन दोनों ने जो भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, इतने आचार्यों ने जो भगवान के अब शिशु रूप की सुंदरता का वर्णन किया, तो वो है वर्णन। फिर बंधन, कैसे 33 करोड़ देवता माता देवकी के गर्भ की स्तुति करे, और देवकी और वसुदेव ने भी अपने वंदना वो अर्पित किए, और भगवान ने फिर सांत्वना कि आप घबराइए मत, आप जो इतने पीड़ित हो, परेशान हो, और उनके द्वारा भगवान ने पृथ्वी देवी और सभी जीवों को सांत्वना दी, और तत्पश्चात वहां से गमन मथुरा से वृंदावन। तो ये पांच पहलू हैं, और इन पांच पहलुओं में से हम पिछली बार जो पहला मुद्दा है जनन, जन्म, कृष्ण जन्म ऑफर्स सिक्स बेनेडिक्शंस, ऑल ऑस्पिशियसनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, earth providing abundantly, reigniting the fire of bhakti, giving opportunities for service and bringing cooperation amongst every living entity. अब देखिए, ये सुखदेव गोस्वामी और हमारे आचार्य बता रहे हैं भगवान जन्मे उस समय जो नक्षत्र, जो अलग अलग प्रकार के ग्रह तारे, उन सब का वर्णन देते हुए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने शुभ लाभ या पूरे वातावरण को मंगलमय बनाया अपने जन्म के द्वारा, ऑल ऑस्पिशियसनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि जितने ऐसे बादल थे जो काले हो चुके और अंधेरा किए हुए थे, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपशकुन थे, कैसे उनको दूर किया। तो एक एक ये जो पहलू भगवान के जन्म के प्रसंग में दिखाई देते हैं, तो उसमें हमारे आचार्य एक एक शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अवतरित कराएं तो कैसे हमारा जीवन ऑल ऑस्पिशियस हो सकता है। हाउ वी कैन हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इफ वी हैव कृष्णा बॉर्न इन आवर लाइव्स और इन आवर हार्ट्स। अर्थ स्टार्टेड टू प्रोवाइड अबंडेंटली, प्रचुर मात्रा में खेत खलियान इत्यादि भरपूर मात्रा में वो प्रदान कर देने लगे मनुष्य समाज को उनकी जरूरतें। तो हम कहां तक चर्चा कर चुके हैं? पिछली बार हम तीसरे पॉइंट तक थे, आज हम चौथे पॉइंट को लेंगे, रीइग्नाइटिंग द फायर ऑफ भक्ति। पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट आपके सामने है। तो अब तक यदि आप देखना चाहें तो हम छह अलग अलग कारण भगवान की जन्म की दिव्यता के, सबसे पहला कारण फर्स्ट सेटिंग में हमने लिया था, विच चाइल्ड इज बॉर्न विद अ मिशन टू सेव प्लैनेट अर्थ. सेकंड, विच चाइल्ड चूजेस हिज पेरेंट्स इवन बिफोर हिज बर्थ. थर्ड रीजन, ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक परीक्षित एंड शुकदेव गोस्वामी ग्लोरीफाई कृष्णास जन्म. फोर्थ, विच चाइल्ड ब्रिंग्स ऑल ऑस्पिशियसनेस विथ हिज बर्थ. फिफ्थ, विच चाइल्ड क्लियर्स ऑल कंफ्यूजन बाय हिज बर्थ. एंड सिक्स्थ, विच चाइल्ड प्रोवाइड्स अबंडेंट रिसोर्सेज टू अर्थ बाय हिज बर्थ. तो अब तक ये छह पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए. तो ध्यान में रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य क्यों है, इसके अब तक हमने छह कारण डिस्कस कर लिए. आगे चलें. तो अब सातवां कारण, रीइग्नाइटिंग द फायर ऑफ भक्ति. तो वर्णन यह है कि जब भगवान जन्मे अवतरित हुए, उससे पहले कंस ने क्या किया था, जितने यज्ञ इत्यादि होते थे तो कंस ने ऐलान कर दिया था कि जहां जहां मेरा राज्य है, जहां जहां मेरी पहुंच है, यज्ञ कुंड में बिल्कुल भी अग्नि धकती हुई दिखनी नहीं चाहिए. तो वो जैसे एक प्रामाणिक राक्षस होते हैं, उस प्रकार का था कंस. वो जानता था, उसको शास्त्रों का ज्ञान था कि यदि मुझे मेरी असुरी वृत्ति या मुझे अधर्म फैलाना है तो अधर्म फैलाने के लिए मुझे धार्मिक कार्यों को पहले बंद करना होगा. और उस युग में धार्मिक कार्य यज्ञ होम अनुष्ठान इत्यादि से किए जाते थे. तो इसलिए कंस ने सबसे पहले यह ऐलान कर दिया, कहीं पर भी यज्ञ नहीं होगा. यदि यज्ञ कोई गलती से भी कर रहा है या छिप के कर रहा है तो कंस के गुप्तचर तुरंत उस यज्ञ की अग्नि को बुझा देते. तो अब स्थिति ये आ चुकी थी कि ब्राह्मण पुरोहित इत्यादि यदि यज्ञ करना भी चाहें तो यज्ञ कुंड में से अग्नि पुनः प्रज्वलित ही नहीं कर पाते थे. यज्ञ कुंड में से उस जमाने में वो कोई माचिस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान किया जाता था अग्निदेव को. तो डर के मारे उनके मंत्रोच्चारण में वो शक्ति चली गई. इसलिए यज्ञ कुंड जहां जहां और विशाल यज्ञ हुए होते थे, हम लोग जो भी यज्ञ अभी देखते हैं कलयुग में, एक छोटा सा यज्ञ कुंड होता है, कुछ समय के लिए चलता है, एक डेढ़ घंटा, पुरोहित क्या मंत्र बोलते हैं वो भी हमें समझ में नहीं आते, स्वाहा बस वो समझ में आता है, स्वाहा स्वाहा. तो वो जब बाकी के मंत्र बोलते रहते हैं हम चुप रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे वो स्वाहा बोला, हाँ स्वाहा. उस जमाने में द्वापर युग त्रेता युग इत्यादि में यज्ञ जो होते थे वो पूरा जो प्रांत, जिस प्रांत में यज्ञ होता था वो पूरा प्रांत उस यज्ञ में शामिल होता. बड़े बड़े यज्ञ कुंड और सामग्रियां जो यज्ञ की होती थी वो सब शुद्ध होती थी, कोई रासायनिक तत्वों से बनी हुई नहीं होती थी, शुद्ध. तो यहां पर जब भगवान अब अवतरित होने वाले हैं और भगवान ने ये जान लिया कि सब जगह पर यज्ञ कुंड की अग्नि शांत है, कहीं पर भी अग्नि नहीं जल रही, तो भगवान ने अपने जन्म से अपने आप जितने यज्ञ कुंड अब तक कंस के भय के वजह से जलाए नहीं गए थे यज्ञ के लिए, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ सारे यज्ञ की अग्नियां जलने लगी। जब कंस ने ये देखा तो कंस भयभीत हुआ कि ये जो अचंभा उसके सामने दिख रहा था अपने आप, अब तक जो ये पुरोहित यज्ञ में अग्नि को आह्वान नहीं कर पा रहे थे, बिना पुरोहित के, बिना मंत्र के, बिना आह्वान के अग्नि जल रही है इस यज्ञ कुंड में, सभी यज्ञ कुंडों में। तो हमारे आचार्य अब भगवान के जन्म की दिव्यता का यह सातवां कारण दे रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो यज्ञशाला, और उस यज्ञशाला में हमारा जो हृदय है वो है यज्ञ कुंड, और उस हृदय के अंदर जो अग्नि कंस या कली के प्रभाव के वजह से अब शांत हो चुकी है हम सब की, भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदि होगा तो वो कृष्ण भक्ति के यज्ञ की अग्नि पुनः प्रज्वलित हो सकती है। कौन है इस भौतिक संसार में जो अपने जन्म से लोगों के हृदय में उनके अंदर जो सुप्त भगवत भक्ति है उसको प्रज्वलित कर सकता है? कोई है? तो इसलिए आज हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, हाउ कृष्ण जन्म रीइग्नाइट्स द फायर। इसलिए ये जो वर्ड यूज किया गया है रीइग्नाइटिंग, रीइग्नाइटिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे चूल्हा, चूल्हे में आपने देखा होगा कि खाना पकने के बाद कुछ समय के लिए कोयले जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। हो सकता है कि वो अग्नि नहीं दिख रही हो लेकिन कोयले के अंदर अब भी वो तपन है, और थोड़ी सी हवा मारिए तुरंत तो अब, हालांकि हम लोग कलयुग में इतने वर्षों पश्चात कोयले तो बहुत समय पहले बुझ चुके हैं, राख भी बन गए, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि यह हरिनाम संकीर्तन और विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन, ये जो विधि है ये इतनी शक्तिशाली है कि चाहे हमारे हृदय के यज्ञ कुंड के जो लकड़ियां हैं उनके ऊपर इतने समय से ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने, परंतु चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इतना शक्तिशाली ईंधन है कि चाहे कोई भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हुए गालियां क्यों न दे, उसके अंदर भी कृष्ण भक्ति ये हरिनाम संकीर्तन जागृत कर सकता है, उसके अंदर भी ये अग्नि पुनः प्रज्वलित कर सकता है, इतनी शक्ति है। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे को लेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बहुत सुंदर तरीके से कहा है, This Hare Krishna Mahamantra is not an artificial imposition. It is already there within everyone's heart. Nitya Siddha Krishna Prem. हम सब के अंदर, बाहर से कृष्ण प्रेम लाकर इंस्टॉल नहीं करना है हमारे अंदर। इसलिए हाल ही में एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे कि क्या गुरु लेना आवश्यक है जीवन में। तो मैंने उनसे पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गुरु आवश्यक नहीं है, पहले आप वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा संबंध तो डायरेक्टली भगवान से होना चाहिए, गुरु यदि मैं अपनाऊंगा तो गुरु बीच में आएंगे। तो मैं मेरे भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसके बीच में मैं किसी को नहीं आने देना चाहता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो मैंने पूछा, तो क्या मान लो गुरु नहीं आ रहे आपके और भगवान के बीच में, तो रास्ता खाली है, साफ है, अभी बीच में कुछ नहीं है। अभी नहीं है, है बहुत सारी चीजें बीच में। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु डजंट कम इन द वे ऑफ द डिसाइपल एंड कृष्णा, ही टेक्स अवे वॉट एवर इज कमिंग इन इन बिटवीन कृष्णा एंड डिसाइपल, ही रिमूव्स दैट। दैट इज द पर्पस ऑफ अ गुरु। जो तुम्हारे और भगवान के बीच में अवरोध अड़चने हैं उसको दूर करते हैं गुरु, वो बीच में अवरोध नहीं बनते, वो है प्रामाणिक गुरु। तो सुप्त कृष्ण प्रेम हमारे सबके अंदर है, और ये जो श्रवण कीर्तन की विधि है ये क्या है, जो इसके ऊपर अवांछित अननेसेसरी कवरिंग से उसको दूर करती है बस। तो यदि कुछ उदाहरण हम लें, हमारे गीता कोर्स में हम ये उदाहरण लेते हैं, ये नीति शास्त्र के उदाहरण हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, इज देयर रोज एसेंस इन अ रोज, गुलाब के अंदर गुलाब जल है कि नहीं, डाउट है कि नहीं। तो गुलाब को जब हाथ में लो तो क्या हाथ गीले हो रहे हैं आपके? सो देयर इज रोज एसेंस इन अ रोज, देन इज देयर ऑयल इन sesame seeds, तिल है ना, तिल का तेल कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग भारत में। फिर इज देयर जैगरी इन शुगर केन, गुड़ है गन्ने में। फाइनल उदाहरण, इज देयर बटर इन मिल्क, कहां से आता है माखन, दही से है ना, दही कहां से आता है, दूध से। तो अब दूध को जब आप दही में परिणित करो और दही को मथो, तो वो जो दही के मंथन से निकलता है वो है माखन। तो दूध के अंदर है वो, एक विधि के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार से हम सब के अंदर, जैसे गन्ने के अंदर गुड़ है, तिल के अंदर तेल है, गुलाब के अंदर गुलाब जल है, दूध के अंदर मक्खन है, उसी प्रकार से हम सब के अंदर कृष्ण प्रेम है। और हर बुधवार को जितने हमारे इतने मंदिर में सत्संग होते हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, यहां पर आकर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, थोड़ा सा बाहर आता है, हफ्ते में एक बार जब आते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं वो भी अंदर चला जाता है, फिर हम वापस आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा वो मक्खन दिखता है, फिर वापस चला जाता है। तो यदि हम अब इसे एक अन्य पहलू से देखें, ये तो हम आत्मा का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना उसकी चर्चा कर रहे थे, अब यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि हमारा शरीर, लेट अस डिस्कस ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल, हमारा शरीर लीजिए, अब हमारे शरीर के अंदर कितने अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, कलात्मक चीजें करने की कलाएं हैं, जैसे क्या क्या कर सकते हैं हम इस शरीर से, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, ये कला है, हम बोल सकते हैं, ये कला है, गा सकते हैं, चल सकते हैं। अब हम जब पैदा हुए, तो जब हम पैदा हुए तो हमें चलना नहीं आता था, कोई है यहां पर पैदा होते ही दौड़ने लगा, या कितने भी बड़े गवैये को लेकर आवा, बड़े बड़े जो सिंगर हैं, क्या पैदा होते ही वो गाना शुरू किए, क्या पैदा होते ही उनके एल्बम्स बन रहे थे? हाँ नहीं, हम सब जब पैदा हुए न तो हम बोल पाते थे, न हम चल पाते थे, न हम गा पाते थे, न हम नाच पाते थे, न कोई प्रकार की कला हम किसी को दिखा पाते थे। इसलिए कई बार बोलते हैं ही इज अ बॉर्न सिंगर। अरे बॉर्न सिंगर जब पैदा हुआ तब जाकर सुनना चाहिए था उसकी आवाज, क्यों बोलते हैं ही इज अ बॉर्न सिंगर, ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट, ही इज अ बॉर्न डांसर, क्यों बोलते हैं? कोई साधारण सा व्यक्ति है जो न तो गायक कलाकार है, न कोई आर्टिस्ट है, बस कॉमन कॉमन आदमी है, तो उसको क्यों नहीं बोलते ही इज अ बॉर्न टॉकर? सभी बोल पा रहे हैं ना, ही इज अ बॉर्न वॉकर, सभी चल पाते हैं। तो हम ये छोटी छोटी चीजें लेंगे आज, एबिलिटी टू वॉक, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू स्विम। अब हमारे अंदर तैरने की शक्ति है, एक विधि है जिसके द्वारा उस शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। बोलने की शक्ति है एक विधि के द्वारा, जीभ है, पैदा होते ही हम सब के अंदर वो वही जीभ, अभी तक वही जीभ लेके घूम रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि बचपन की जीभ अलग थी रोने के लिए या जो भी हो, फेरेक सेरेलैक खाने के लिए, और अभी बड़े होने के बाद जीभ अलग है रबड़ी पूरी खाने के लिए या बकबक करने के लिए। नहीं, वही जीभ है। तो हुआ क्या, क्या उस जीभ में बाद में आकर ब्रह्मा जी जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, बीच में आकर उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया बोलने का सॉफ्टवेयर, अब ये बड़ा हो गया है, इसको अभी बोलना चाहिए तभी जीवन जी पाएगा, तो एक बोलने का स्पीकिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालते हैं, जैसे कंप्यूटर में डालना पड़ता है। अगर ये सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में नहीं डालो तो कंप्यूटर खाली एक मशीन का टुकड़ा है और कुछ नहीं। एबिलिटी टू सिंग, पेंट, डांस, जितने सारे ये सब, कहने का मुद्दा ये है कि ये सब हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हैं। करते क्या हैं हम, बड़े होने के बाद उस पर हम थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद फिर हम धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, या हमारे मां बाप हमसे बुलवाते हैं, बेटा बोलो मामा पापा, बोलो ऐसे ऐसे बोलो, तो फिर वो बोलना शुरू करता है। फिर वो देखो वो कैसी कैसी भाषाएं बोलना शुरू करता है। अब छोटे छोटे बच्चे, आप की मातृभाषा कुछ और होगी, वो बच्चा साउथ इंडिया में पैदा हुआ, एकदम छोटा सा बच्चा ऐसी साउथ इंडियन भाषा मलयालम बोल रहा है, आप मलयालम ही नहीं बोल पाओगे, उसके भाषा क्या, वो शब्द ही नहीं बोल पाते गए। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको उसकी ट्रेनिंग मिली है। तो आपको हम कुछ दो तीन बच्चों का वीडियो दिखाएंगे, ये बच्चे हम सब याद कीजिए, याद तो नहीं आएगा खैर हम जब इतने छोटे थे, लेकिन हाँ माता पिता को पूछोगे तो हाँ तू भी तोतली भाषा बोलता था, ऐसे ही बोल नहीं पाता, तेरे को हमने बोला कि ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर। एक वीडियो, तीसरा वीडियो जो आपको हम दिखाएंगे, उसमें एक आठ महीने का छोटा सा शिशु, शिशु ही बोलेंगे ना उसको, स्विमिंग कर रहा है 8 महीने का। लाइट्स, तो केवल इसमें हम मुद्दा ये आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कैसे सुप्त अवस्था में सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग के द्वारा इसको उजागर किया जा सकता है। अब ये कितना बड़ा होगा ये बच्चा, मेरे ख्याल से कुछ महीनों का होगा शायद ये।
I love you. I love you.
We're going to Bobby go.
This is Amelia talking to Daddy on the phone.
Daddy,
I think he said bye.
Bye.
Amelia, can I see? Yeah, see, he's gone. Okay. Okay. Say bye-bye. He's gone. Bye-bye.
She's tired now.
Okay.
No. She did it. She's
got it.
You got it?
आठ महीने का था कल, तो मुद्दा यह है, आपने देखा बात करने की शक्ति, चलने की शक्ति, कितना समय वो छोटे से बच्चे को लग रहा था खड़े होने में। हम लोग सब उस स्थिति से गुजरे हैं, कोई पैदा होते ही ओलंपिक का रनर नहीं पैदा हुआ। तो ये हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट सुप्त अवस्था में तैरने की शक्ति, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, छोटी सी लड़की फोन पर लैंग्वेज उसने शुरू कर दी, जो भी वो लैंग्वेज बोल रही थी उसको भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बोलना बोलना बोलना। इसलिए होता है ना कि बच्चों को वो पहले कहते हैं बोलो बोलो बेटा बोलो बेटा, बोलना नहीं आता है बच्चे को, फिर बोलना शुरू करता है थोड़ा बड़े होने के बाद, अरे थोड़ा चुप भी रहा कर, फिर उसको चुप करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में है। जैसे हम सब के अंदर सुप्त अवस्था में बोलने की, चलने की, तैरने की, गाने की, नाचने की जो भी शक्तियां हमारे अंदर थी या हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति भी। अब होता क्या है कि क्योंकि कृष्ण भक्ति को उजागर करने की जो विधि है वो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि यहां पर उपस्थित हम सब तैर सकते हैं, परंतु यदि गलत तरीके से हम तैरना सीखने जाएं तो नहीं तैर पाएंगे। अब वो छोटा सा शिशु, उसको कहां ऊपर नीचे कर कर फेंक रहा है पानी के अंदर, बिल्कुल रो नहीं रहा है और तैरे जा रहा है, तैरे जा रहा है। कोई कोई बड़ा वयस्क भी इस प्रकार से फ्लोट नहीं कर पाएगा। कितने अच्छी तरीके से वो फ्लोट कर रहा, वो भी कपड़े पहना हुआ। तो क्योंकि कृष्ण भक्ति की जो विधि है उसको जागृत करने का तरीका, एक तो कलयुग में लोग भाग्यहीन हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, इसलिए उनको सही विधि नहीं मिलती, सही कोच या ट्रेनर नहीं मिलता। यदि मिल भी जाए तो वो गलत तरीके से उसका पालन करते हैं, इसलिए वो जो कृष्ण प्रेम है कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिखता है परंतु पूर्ण रूपेण दिख नहीं पाता। जैसे लड़खड़ा रहा है वो बच्चा जो गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है। कई बार हमारी स्थिति साधना भक्ति में ऐसी होती, थोड़ा सा हम खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर रहा था ना, खड़े होकर कीर्तन में दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो सभी भक्त अरे आप आ गए, हरी बोल वो भी ताली मारते हैं, फिर गिर जाते हैं हम लोग, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। भक्ति में भी यही चल रहा है हमारा। हम बच्चे को देखकर ताली मारकर हंस रहे होंगे, सारे 33 करोड़ देखकर हमको देखकर हंसते हैं कि जैसे ही जन्माष्टमी आई इसकी माला बढ़ जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे नया साल आया वापस माला बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। खड़े होते हैं गिरते हैं, खड़े होते हैं गिरते हैं, खड़े होते हैं गिरते हैं। तो अब रीइग्नाइटिंग द फायर ऑफ भक्ति कैसे करना है, बहुत सरल उपाय बताया गया। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। श्रवण आदि का अर्थ है श्रवण कीर्तन के द्वारा, जो हम लोग यहां पर आकर हरे कृष्णा मंदिर में बहुत आसानी से कर पाते हैं। बैठकर सुनना है, गाना है, कीर्तन करना है, जप करना है, बस वो पुनः जागृत, वो अग्नि दहकने शुरू हो जाएगी पुनः हमारे यज्ञ कुंड के अंदर। तो अब कृष्ण जन्म के 4 वरदान अगर हम समझने की कोशिश करें तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण और उनकी लीलाएं। नाम रूप गुण लीला। और ये जो नाम रूप गुण लीला है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जो 4 वरदान हैं, इन सब को हम श्रवण एवं कीर्तन ये कैटेगरी में डाल सकते हैं। श्रवण कीर्तन किसका कर रहे हैं हम? भगवान कृष्ण के नाम का, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, इसका श्रवण कीर्तन हो रहा है। तो अब एक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से एक कथा लेंगे। हालांकि ये कथा केवल 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाएंगे। सबसे ज्यादा छोटी कथा यदि 10वें स्कंद की है तो वो है फल बेचने वाली की। केवल 2 श्लोकों में कथा सुनाई है, परंतु हमारे आचार्य जैसे कि षड गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने ये दो श्लोकों की, कोई बच्चों को थोड़ा संभाले, अभी उनको चुप होने के लिए कहना पड़ता है। तो ये जो कथा है, स्टोरी ऑफ विडोड फ्रूट वेंडर फ्रॉम मथुरा, मथुरा की थी ये फल वाली, और ये एक विधवा थी, मिडिल एज्ड विधवा थी ये, और इसका पेशा फल बेचना नहीं था। हमारे आचार्य कहते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसने एक बहाना ढूंढा वृंदावन आने का, नहीं तो कोई उसे आने नहीं दे रहा था मथुरा से। तो भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए, देखने के लिए ये फल वाली मथुरा से वृंदावन, उसके अंदर वो इच्छा कहां से जागृत हुई? श्रवण आदि, मथुरा में बैठे बैठे वो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनते आ रही थी, श्रवण कर रही थी। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कैसे सुप्त भक्ति पुनः जागृत होती। तो आज हम कोशिश करेंगे, 6 लेसन्स हैं, केवल ये जो 2 श्लोक में कथा सुनाई गई है, परंतु हमारे आचार्यों ने बहुत गहरी उत्प्रेक्षा इसकी की है। तो 6 कारण ये सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत फल वाली के अंदर कैसे हुई, उसकी चर्चा करने का प्रयास करें। तो 6 कारण में से सबसे पहला कारण, पावर ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा जो इसके अंदर दिखी। सेकंड, कंटेंट ऑफ आवर माइंड कम्स आउट थ्रू आवर माउथ। तो जब हम लीला ये सुनाना प्रारंभ करेंगे तो उसके जो पूरा प्रसंग है, एक एक जो पहलू है उसमें से एक एक शिक्षाएं हैं ये। पहले आपको पूरी लिस्ट दे दें, 6 लेसन्स क्या है। इफ यू कॉल सिंसियरली कृष्णा विल श्योरली कम। अट्रैक्शन फॉर कृष्णा लीड्स टू सर्विंग कृष्णा। कृष्णा ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विद आवर डिवोशन। फाइनली देयर इज ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटी। तो मथुरा में रहने वाली ये फल वाली, या उसको बाद में फल वाली कहने लगे लोग, जो विधवा मथुरा में रहने वाली, तो वो एक एक कर कर भगवान की लीलाओं का श्रवण करती थी। किन से? जो भी वृंदावन से मथुरा ऐसे ही घूमते फिरते जाते, तो वो ऐसा नहीं कि वो कोई ऑर्गेनाइज करते थे कृष्ण कथा कि चलो अभी मथुरा में हम हैं तो कृष्ण कथा हम ऑर्गेनाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि कंस वहां पर, तो कृष्ण कथा क्या ऑर्गेनाइज करेंगे मथुरा में। तो ऐसे ही लोग आपस में जो चर्चा करते करते ये स्त्री छुप के सुनती। इसका हियरिंग कैसे होता? छुप के। कोई ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था कि अभी भगवान ने पूतना का वध किया है, तो पूतना वध कैसे किया, पूतना वध के पीछे कितने भगवान के 8 कारण थे उसको वध करने के, नहीं, ये सब कुछ नहीं। She would just overhear other people discussing about Krishna। तो सबसे पहले यदि हम पावर ऑफ हियरिंग को देखें, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर यदि कृष्ण भक्ति की अग्नि को पुनः जागृत करना है तो श्रवण, और श्रवण से सबसे पहले क्या चीज होती है, हम सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। अभी कई बार प्रवचनों में उल्टा हो जाता है, जागृत अवस्था से सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, परंतु जनरली साधारणता क्या होना चाहिए कि सुप्त अवस्था से हम, अब सुप्त अवस्था कौन सी है आप लोगों को लग रहा होगा भाई अब तो जगे हुए हैं और क्या जगना है। यहां पर जगने का अर्थ है जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, सो देर इज अ नाइट ड्रीम एंड देन देर इज अ डे ड्रीम एंड बोथ आर इल्यूजरी। कि दिन में कोई सपने संजो रहा है कि मैं कंपनी का सीईओ हूं या मैं बॉस हूं या मैं एम्प्लॉय हूं, मैं पति हूं, पत्नी हूं, ये हूं, स्टूडेंट हूं, जो भी इत्यादि। तो शास्त्रों के अनुसार ये जो भौतिक उपाधियां हैं ये भी एक स्वप्न है। जैसे एक बार एक राजा, वो नहा धोकर सुबह सुबह अपने राजमहल में जब आए उस दिन की राज्यसभा शुरू करने के लिए, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से एक बहुत विचित्र प्रश्न पूछा। मंत्री से प्रश्न पूछा कि मुझे कल रात एक सपना आया कि मैं तितली बन गया, तो मैं इस सपने को कैसे समझूं, मैं तितली बन गया। तो मंत्री ने अब इस राजा को और भ्रमित कर दिया। मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या ऐसे तो नहीं हो रहा कि जो तितली है वो सपना देख रही है कि वो राजा बन गई? हो सकता है आप जो मुझसे बात कर रहे हो ये तितली का सपना चल रहा है, तितली सपना देख रही है कि वो राजा बन गई है और वो अपने मंत्री से बात कर रही है या कर रहा है। तो ये भ्रमित हो गया कि असलियत क्या है और सपना क्या है। जैसे मान लो कि अगर आपको भ्रमित करने के लिए मैं कहूं कि आप लोग यहां पर बैठकर गीतामृत कार्यक्रम सुन रहे हो, देख रहे हो, ये वास्तविकता नहीं है, आप उठे ही नहीं कल से और ये सपना चल रहा है जिसमें आप आके और फिर इसके अंदर आप सो रहे हो गीतामृत में, तो सपने के अंदर आप सोए, उसके अंदर एक और सपना देखा और वो सपने में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? क्या मुझे थोड़ा आगे का स्लाइड दिखा। प्रभुपाद कहते थे अगर इसको हम गहराई से समझें तो जो इल्यूजन है, इल्यूजन वो कई बार इतना सच्चा दिखता है, जैसे जादूगर होते हैं ना, वो कैसे अपने हाथ की सफाई से हमारे सामने ऐसे परिंदा हाथ में पैदा करके दिखा देंगे या खरगोश या जो कुछ, और हम लोग एकदम बाप रे कैसा हुआ, हाथ की सफाई है, चकमा दे रहा है हमारे आंखों को, हम भी जानते हैं, पैसे दे रहे हैं चकमा दो मुझे, मैजिक शो देखने जाते हैं पैसे देते हैं मुझे चकमा दो, परंतु हम प्रूव नहीं कर पाते इसलिए हमको वो असलियत लगती है। बाकी जादूगरों को दिखाओ, वो जादूगर जानते हैं कि इसने कहां से निकाला और ये सब कैसे करता है उसके हाथ की सफाई। तो उसी प्रकार से माया देवी जो एक जादूगरनी है उसने हमारे सामने ये पूरा पूरी जो सृष्टि है क्या, इट्स अ मैजिक शो गोइंग ऑन, उनके सारे हाथ की सफाई चल रही है और हम लोग सब इसके अंदर बने हुए हैं एक कठपुतली। तो इसलिए जब हम सही मायने में श्रवण करते हैं हमारी असलियत के बारे में कि ये जो मैं शरीर अपने आप को मान रहा हूं भारतीय शरीर है, भारत के अंदर महाराष्ट्रियन शरीर है, गुजराती शरीर है, पंजाबी शरीर है, साउथ इंडियन शरीर है, कितनी अलग अलग उपलब्धियां और हम डालते जाते हैं इसके ऊपर। साउथ कैनरा सारस्वत बैंक, नॉर्थ कैनरा सारस्वत बैंक, ईस्ट कैनरा, उसके अंदर अलग अलग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब बना दिया हमने और उपलब्धियां डालते जा रहे, और ये सबको धीरे धीरे दूर करना ये श्रवण की विधि है। कितनी अग्नि हमारे अंदर छिपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए कितने कवरिंग्स को बाहर निकालना पड़ता है। अवेकन्स अस फ्रॉम अवर इल्यूजरी ड्रीम लाइफ। देन द सेकेंड थिंग विच हैपन्स when we hear attentively, just hearing Krishna Katha attentively, we get knowledge, Gyan. Thirdly, after getting knowledge, we start developing interest. Jitna hum sunte hain, utna interest jagrat hota hai. Tat paschat akarshan. After developing interest, then there is attraction. When we are sufficiently attracted, then there is desire to serve and please the object of our hearing. And then finally, it purifies us from within and without. Aur ye jo last stage hai, tab jaakar wo chingari, Krishna bhakti ki jo chingari hai, ab thodi thodi agni mein parinit hui hai. To ye phal wali, iske andar supt Krishna ke prati akarshan prarambh hua. जब इसने यहां वहां से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनना इसने शुरू किया मथुरा में. तो हम अब श्रवण एवं कीर्तन, जिसकी तुलना यहां पर हम एक अलार्म क्लॉक से करते हैं. तो ये उदाहरण हम इसलिए लिए हैं क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि जब हमको उठना होता है तो बहुत कम होते हैं जो अपने आप उठ जाते हैं जिस समय पर उठना होता है ना, नहीं तो उठाना पड़ता है ना. बचपन में याद नहीं है क्या, माँ बाप हमारे स्कूल जाने के लिए हमको उठाया करते थे. अभी भी बड़े होने के बाद भी हमको उठाना पड़ता है. कितने यहां पर हैं जिनको सुबह सुबह उठना पसंद है? आप लोगों को फिर सोना पसंद नहीं है? अच्छा, अब प्रश्न ये होगा कि प्रभु जी सुबह किसको कहेंगे आप? इसलिए हिंदी में जब एक बार आप सुबह बोलो तो वो 12 बजे तक भी उसको सुबह बोलते हैं. लेकिन मैंने क्या पूछा था, सुबह सुबह दो बार सुबह लगाया जाता तो क्या हो जाता है? तो दो बार सुबह लगाने का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले. अब हाथ ऊपर करिए. ठीक है, हम चेक करने आएंगे. अच्छा, बिना अलार्म के उठ जाते हैं आप लोग? ओके, मतलब आप लोग काफी आगे स्तर तक पहुंच चुके हैं. तो यहां पर हमने उदाहरण दिया है कि साधारणतः हमको हमारी नींद की अवस्था से बाहर आने के लिए हमको कोई व्यक्ति चाहिए उठाने के लिए, और वो व्यक्ति भी बोलता है. जब कुछ बोलता है तो कान एक ऐसी चीज है, हमारी एक ऐसी इंद्रिय है कि सोते वक्त ये कान में जो अलार्म की आवाज सुनाई देती है, खुले रहते हैं कान, अलार्म की जो आवाज सुनाई देती है, समय लगता है थोड़ा सुनने में. तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि श्रवण कीर्तन की जो विधि है और अलार्म से उठने की विधि तकरीबन एक जैसी है. अब आजकल पता नहीं आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी क्या कि ऐसे ऐसे विचित्र अलार्म क्लॉक का आविष्कार किया गया है. एक कारण ये नहीं कि वो कोई लग्जरी या फैंसी के लिए, क्योंकि लोग उठ नहीं पा रहे तो उनके लिए इस प्रकार के अलार्म क्लॉक बनाए गए. मुझे एक भक्त दिखा रहे थे विदेश में, एक अलार्म क्लॉक है वो मुर्गी के शेप में, मुर्गी, तो उसको आप सेट कर दो सुबह 4:30 या 5 बजे, तो सुबह 4:30 बजे जब वो अलार्म बजेगा तो वो मुर्गी से अंडे गिरने शुरू हो जाएंगे. 4-5 अंडे यहां वहां बिखर जाएंगे और वो बचता रहेगा अलार्म जब तक वो अंडे पकड़ पकड़ कर अंदर नहीं डालोगे आप. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यदि आप इतने ढीठ हैं कि अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठोगे तो मुर्गी अंडा यहाँ वहां बिखार देगी, तो आपको सबको उठा के जब तक अंदर डालोगे नींद उड़ जाएगी आपकी। एक अलार्म क्लॉक जैसे ये लैम्प शेड होता है, तो वो लैम्प शेड जैसा आपके सर के थोड़ा 2 फुट ऊपर लटका रहेगा। वो आपने सेट किया है सुबह सुबह का अलार्म क्लॉक, वो बजेगा। यदि आप उठकर उसको टच नहीं करो तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा वो, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। एक कोई अलार्म क्लॉक है उसमें पिन्स हैं बहुत सारे, जैसे ही बजता है तो पिन उड़ के कहीं तो कमरे में यहां वहां गिर जाता है, और जब तक वो पिन ढूंढ के उसके अंदर वापस नहीं डालोगे वो बंद नहीं होगा, उसके आवाज बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है उसका। और एक तो जर्मनी में उन्होंने ये बेड बनाया, बेड पूरा बेड बनाया उन्होंने ऐसा, वो एक छोटा सा स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है उतना बड़ा एक बेड है, और वो बेड ऐसा है कि उसके अंदर इतने अलग अलग सिस्टम्स हैं। आपको अगर सुबह सुबह उठना है और आप ऐसे सोने वाले हैं कि कुंभकर्ण भी आपके सामने हार जाए, अगर कोई ऐसे सोने वाला है तो ऐसा बेड उसके लिए बनाया है, कुंभकर्ण जैसे नींद वालों के लिए। तो वो बेड पहले तो आवाज आएगी उस बेड में, अलग अलग सिस्टम स्पीकर सिस्टम हैं, यदि नहीं उठा तो बेड जो है वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा, बेड हिलने लगे। और फिर भी यदि कोई इतनी गाढ़ी नींद में सोने वाला है, पीएचडी हासिल जिसने की है नींद में, तो वो बेड में एक इजेक्ट सिस्टम है, आपको वो बेड उठा के बाहर फेंक देगा बेड से। कई तो ऐसे हैं कि नीचे गिरने के बाद जमीन पे सो जाते हैं, मतलब। अब उसके लिए उन्होंने कुछ बेड का निकाला नहीं कि वो बेड भी उठ के उसके ऊपर गिर जाए, हो सकता है वो आगे चल के वो निकालें। तो ऐसे ऐसे अलार्म क्लॉक्स निकाले गए हैं केवल हमें उठाने के लिए, जगाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म और अपने कर्म के द्वारा अलग अलग अलार्म क्लॉक्स बनाते रहते हैं, भेजते रहते हैं। यदा यदा धर्म से है क्या अलार्म क्लॉक्स, हर एक युग के लिए अलग अलग, कलयुग के लिए बहुत पावरफुल, बहुत चित्र विचित्र अलार्म क्लॉक बनाने पड़ते हैं भगवान को। तो मैं ये अलार्म क्लॉक का उदाहरण लिया, और 4 reactions when alarm rings, विशेष रूप से ब्रह्मचारी आश्रम में आप देखोगे हर ब्रह्मचारी के पास अलार्म क्लॉक होता है। जब हम चौपाटी में रहते थे तो वहां पर अलग अलग साइज के अलार्म क्लॉक्स, उनका वॉल्यूम अलग अलग और बंद करने का तरीका अलग अलग उसको। तो 4 reactions अलार्म बजने के और 4 reactions कृष्ण कथा सुनने के, दोनों में पैरेलल ध्यान में रखिएगा कि हम डिस्कशन श्रवण कीर्तन या कृष्ण कथा का जो श्रवण है उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी है कि उनको अलार्म की आवाज सुनाई नहीं देती, ऐसे हैं। एक हमारे वहां पर चौपाटी में एक ब्रह्मचारी उस समय बहुत वो बड़ा अलार्म क्लॉक खरीद के रखे हुए थे, लगाते थे, टेंपल हॉल में सोते थे उसको लगाकर, इतने बड़े साइज का अलार्म क्लॉक था, अपने बगल में रखते थे, चटाई के एकदम बगल में रखकर सोते थे, पूरा टेंपल हॉल उड़ जाता था, वो पूरा 7 KM मुंशी मार्ग तक आवाज आती थी, उनके अलावा सब उड़ जाते थे। एक्चुअली उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। एक हमारे वहां मथुरा मोहन प्रभु हैं, बहुत थोड़े एल्डरली हैं, तो उनको उनकी नींद बहुत कच्ची नींद, तो जब भी इनका अलार्म कोई बेटाइम बजता, तो एक बार तो उनको इतना गुस्सा आया है प्रभु जी को, तो उन्होंने वो अलार्म उठाया और बाहर रास्ते पे फेंक दिया। रोड है हमारे मंदिर के सामने वाला रोड, तो रोड पे फेंक दिया और टूट गया अलार्म, टूटने के बाद भी बज रहे हो, वो भी ढीठ था अलार्म। तो ये पहली कैटेगरी है जो सुनने आते हैं लेकिन कुछ भी अंदर नहीं घुसता। अलार्म बज रहा है, एक घंटा दो घंटा लेक्चर चल रहा है या किताब लेकर ग्रंथ लेकर बैठे हैं एक एक, एक, एक दो दो घंटा, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं घुस रहा। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, व्हेन द अलार्म गोज ऑफ दे कांट इवन हियर इट। देन द सेकेंड कैटेगरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बहुत लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और वो इस कैटेगरी के लोगों के लिए आजकल सारे अलार्म क्लॉक के अंदर ये एक फीचर है। क्या फीचर है? स्नूज। स्नूज मतलब, अभी आपको अंदर की बात हम बताना चाहेंगे कि मंगल आरती 5 बजे की है, तो कम से कम 4:30 बजे तो उड़ जाना हम ब्रह्मचारी को चाहिए तैयार होने के लिए। तो मैं अलार्म लगाता हूं 3:30 का, क्योंकि 3:30 का अलार्म जब बजता है तो उसके बाद मेरे को ऐसी तसल्ली मिलती है कि और एक घंटा सोने मिल रहा है वो स्नूज करते 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 करते। पता नहीं कोई करता है यहां पर? यू गेट सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू आर गेटिंग 1 more hour एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन वो स्नूज ने आपको एक और घंटा दे देता है वो। तो ये स्नूज है क्या, उसको दबा दो, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, फिर वो अलार्म क्लॉक बोलेगा ठीक है 5 मिनट बाद वापस बजूंगा, सो जा 5 मिनट के लिए, फिर वो 5 मिनट के लिए, फिर वापस 5 मिनट बाद बजता है, फिर उसको स्नूज बटन दबा दो, फिर बोलता है फिर से तूने मेरे को दबा दिया, फिर सोने वाला है तू, ठीक है और 5 मिनट ऐसे। तो कई बार ये कैटेगरी के लोग कृष्ण कथा सुनने आते हैं कि जगह है, ये नहीं कि अंदर घुस नहीं रहा है, जगह है, अंदर कृष्ण कथा जा रही है, लेकिन फिर उसको पोस्टपोन कर देते कि जो भी कुछ सुना है उसको अगले बुधवार को अमल करेंगे, फिर उसको पोस्टपोन करते हैं अगले बुधवार को, अगले बुधवार को, अगला साल भी आ रहा है, पोस्टपोनिंग पोस्टपोनिंग। सो दिस मेंटालिटी, मेनी पीपल इन कलयुग दे फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ पोस्टपोनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन देयर लाइफ, और हम ये नहीं जानते कि कितने जन्म जन्मांतर तक हम यही करते आए हैं, हमारे कृष्ण कथा के अलार्म को स्नूज बटन दबाते 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 कितने जन्म तो ऐसे ही बीत गए हमारे। देयरफॉर आई से दैट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज लाइक अ सेगमेंट। मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री में सीखे ना सेगमेंट, सो द सेगमेंट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, सो पॉइंट बी इज अवर बर्थ एंड पॉइंट डी इज डेथ। इन बिटवीन बी एंड डी विच अल्फाबेट कम्स, कौन सा अल्फाबेट आता है? सी। सो वी Our B and D is not in our hands, but C refers to choice. That is in our hands. हमारा जन्म और हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है. B and D is not in our hands, but the alphabet C is in our hands. That is choice. What we do? Are we snoozing our life? Snoozing Krishna Katha? Are we snoozing, postponing spirituality? एक बहुत अच्छा कोट मुझे हाल ही में सुनने मिला, एज रिगार्ड्स टू वी बीइंग अ मेल, इट इज बाय बर्थ। कोई अगर पुरुष है पैदा हो रहा है तो बाय बर्थ यू कैन बी कॉल्ड एज अ मेल, बाय एज you become a man, but by your choice you become a gentleman. अगर आपको मेल से मैन और मैन से जेंटलमैन बनना है तो सी जो चॉइस है वो बहुत जरूरी है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वॉट वी डू विद दैट अल्फाबेट सी इन बिटवीन बी एंड डी ऑफ आर लाइफ, द सेगमेंट बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ. तो इसलिए यहां पर कृष्ण कथा तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. ये हमारे ऊपर है कि हम इस कृष्ण कथा रूपी अलार्म क्लॉक को स्नूज कर रहे हैं या हम उठ रहे हैं. और जो तीसरा कैटेगरी है, सम पीपल दे सिट अप, उठते हैं, वो अलार्म बंद करते हैं फिर से सो जाते हैं. तो ये तीसरी कैटेगरी के हैं जो मंदिर आते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, बैठकर बहुत उत्साह दिखाते हैं, फिर गायब, वापस से अपना पलंग ढूंढते हैं, जहां से आए सो जाते हैं वापस जाकर. एंड वेरी फ्यू दे गेट ऑफ देयर बेड्स, अपने पलंग से बाहर निकलकर अपने आप को साफ कर नहा धोकर उस सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं. वेरी फ्यू. सो दीज आर दी फोर रिएक्शंस विच वी सी वेन एवर द अलार्म गोज ऑफ व्हेन वी आर इन डीप स्लीप. ये कैटेगरीज एक्सपीरियंस किए ना, है ना. कई बार हमारे साथ ये चारों कैटेगरी होती है. शुरुआत में अलार्म सुनाई नहीं देती, फिर उसको स्नूज करते रहते हैं, थोड़ा उठ के वापस सोते हैं, फिर यदि कोई उठा दे हमें या फिर अलार्म दूसरी तीसरी कोई लगा रखी वो बज जाए, तो फाइनली हम कितने जन्म जन्मांतर ब्रह्मांडों में घूमकर अब हम अपने आप को कम से कम जागृत अवस्था में पा रहे हैं. तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो इसके कनेक्शन में आपको हम दिखाना चाहेंगे, और इसमें भी हम हमारी तुलना उस व्यक्ति से कर सकते हैं कि जिसके जीवन में इतने सारे अलार्म क्लॉक्स उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रतिनिधि कितने अलार्म क्लॉक्स सब जगह लगा दिए हैं. कहां पर भी जाओ, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन ने अलार्म क्लॉक लगा रखे हैं. आप चाहे अफ्रीका जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, परभणी जाओ, 40 गांव, लसल गांव, जो भी गांव, निफाड़ इत्यादि, जहां पर भी सब जगह पर अलार्म क्लॉक फिट करके रखे हुए. अब प्रश्न हमारे ऊपर है कि हम उठना चाहते हैं कि नहीं.
채소를 많이 먹을 수 있는 게 가장 큰 장점 되겠다.
나 채는 잘 안 채는데요. 비타민 많다고 들어.
कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी होती है, चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला अलार्म के रूप में हमें जागृत करने के प्रयासों में लगा हुआ है, और इस व्यक्ति की तरह हम डटे हुए हैं कि चाहे कितने भी अलार्म बज जाएं, हम सोते रहेंगे सोते रहेंगे सोते रहेंगे। तो इसलिए मैंने अलार्म का उदाहरण लिया। कृष्ण कथा सबसे पहले यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट हमने आज डिस्कस किया, इट अवेकन्स अस फर्स्ट, और जागृत अवस्था में फिर हम ज्ञान, भगवान के विषय का जो ज्ञान है, फिर जागृत अवस्था में हम हासिल कर सकते हैं। अब देखो, ज्ञान जो है वो एक ऐसी वस्तु है कि जितना हम रिपीटेडली किसी व्यक्ति के बारे में या कोई ज्ञान को हम रिपीटेडली सुनते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट मैटर में होता रहेगा, या हम बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हमको बचपन में वो जो डार्विन की थियोरी बताई जाती थी कि हम सब बंदरों से आए हैं, बंदरों से आए हैं, इतना बताया गया कि किसी ने फिर आगे जाके प्रश्न भी नहीं पूछा कि भाई हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं और ये स्कूलों में हमको कुछ और पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया उन बच्चों को। जैसे एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी हम कहां से आए? पिताजी कहता है बंदरों से आए। तो अपनी मां को जाके पूछता है, मां कहती है हम भगवान से आए। तो वो कंफ्यूज हो गया, मतलब पिताजी तो बोल रहे हैं कि हम बंदरों से आए, आप बोल रहे हैं हम भगवान से आए। तो मां कहती है वो भी सही कह रहे हैं, पिताजी के साइड के सब बंदरों से आए हैं, मेरी साइड के सब भगवान से आए। तो ये जो नॉलेज जिसको हम कहते हैं, इस भौतिक संसार का ये जो नॉलेज है, ये क्या नॉलेज है कि हमें, जैसे कि वो सपने के अंदर एक सपना देख रहा था, तो सपने के अंदर हमको एक और सपना दिखाता है ये नॉलेज भौतिक, और जितना हम इसको सुनते जाते हैं उतना उस सपने के अंदर एक और सपने के अंदर घुसते जाते हैं। वी आर इन अ बिगर इल्यूजन ऑलरेडी एंड देन वी गो इन टू अनदर इल्यूजन विद इन दैट इल्यूजन बाय गेटिंग मटीरियल नॉलेज। इसलिए ज्ञान अर्थात इस अध्याय का शीर्षक क्या है, चौथे अध्याय का, दिव्य ज्ञान। तो वो दिव्य ज्ञान जो है हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति की जो चिंगारी है उसको अग्नि में धीरे धीरे परिणित करने में मदद करता है। इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग। अब देखिए कि इतना हमने भारत में कुछ लोगों के बारे में सुन रखा है, मान लो सचिन तेंदुलकर या कोई अभिनेता या अभिनेत्री, अमिताभ बच्चन टाइप, इतना उनके बारे में सुन रखा है, देख रखा है। तो हम बोलें कि अगले बुधवार को अमिताभ बच्चन ऑडियंस में आके बैठने के सुनने वाले, देखो कितने लोग आ जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके बारे में इतना सुन रखा है, इसलिए इंटरेस्ट है उसके बारे में इतना। अभी यदि मैं आपको ऐसे ही कोई किसी का नाम बता दूं, शत्रुक नहुंते, अगले बुधवार को शत्रुक नहुंते आने वाले हैं, क्लास में बैठ के सुनने वाले, तो आप लोग अभी देख रहे हो कि अगले बुधवार को क्या, फिर तो अगर आप वो हर बुधवार को भी आए, अगर आपने सुना नहीं उनके बारे में तो आप कभी नहीं आएंगे। सो नॉलेज when it is from the right and pure source, it will give you interest in the right way and in the pure way. Then that interest will bring about attraction. And that attraction will lead to desire to serve and please that object. इसलिए ये जो फल वाली, फिर से हम जो फल वाली का उदाहरण है कि ये फल वाली जो भगवान के विषय में सुनी प्रामाणिक सूत्रों से और उसके अंदर एक मासूमियत थी सुनते समय, प्रामाणिक तरीके से उसने श्रवण किया, प्रामाणिक सूत्रों से श्रवण किया, तो उसके अंदर इंटरेस्ट भगवान के प्रति और उस इंटरेस्ट के साथ साथ एक आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति, और आकर्षण के पश्चात फिर उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं ये जो भी कृष्ण है, कृष्ण कितने बड़े थे उस समय? एक साल के थे केवल, जो हमने वो बच्चों का वीडियो देखा, एक साल के भगवान कृष्ण। तो एक साल के भगवान कृष्ण के प्रति उस फल वाली का आकर्षण, और उस आकर्षण जो सही मार्ग पर चला उसका नमूना क्या था कि वो निकली फल की टोकरी को लेकर वृंदावन की ओर, और उसके पास कोई साधन नहीं थे। यहां तक कि जमुना बीच में आ रही थी, तो जमुना क्रॉस करने के लिए उसने केले के पेड़ का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर बैठकर फलों की टोकरी के को अपने सर पर रखकर उसने जमुना क्रॉस करी। और ऐसी तीव्र इच्छा को भगवान श्री कृष्ण को मुझे कुछ अर्पित करना है, इस तीव्र इच्छा को लेते हुए अपने हृदय को उसने शुद्ध बनाया उस समय, और वो मथुरा से वृंदावन की ओर अब निकल पड़ी है। तो जो पहली शिक्षा है पुनः जागृत करने की, इसमें से हम यही सीखते हैं कि कैसे पहले श्रवण करना है, और श्रवण करने के पश्चात तो हम हमारी अगली सेटिंग में डिस्कस करेंगे कि वो वृंदावन पहुंचने के बाद उसने किया क्या, कि अभी तक तो श्रवण करने के बाद केवल हमारे अंदर की जो अग्नि है वो थोड़ी सी चिंगारी जो है थोड़ी सी अग्नि में अब परिणित हुई है। अब उसके पश्चात फिर हम उस अग्नि को कैसे बढ़ाते हैं जैसे इस फलवाली ने बढ़ाया, और उसको इतना बड़ा कर देते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे अंदर की कृष्ण भक्ति इतनी प्रज्वलित हो जानी चाहिए कि जितने अनर्थ हैं, जितने कल्पश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो त्रिताप है और षड रिपु है, ये सब को इनका भस्मसात कर देना चाहिए, इतनी तीव्र ये अग्नि बन जानी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एक तरफ हम अग्नि को जलाते हैं जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, परंतु उसके साथ साथ जैसे ही हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक तरफ अग्नि को जला रहे हैं, दूसरी तरफ पानी भी डाल रहे हैं, तो अग्नि की क्या हालत होगी। इसलिए ये जो जीवन शैली श्रील प्रभुपाद ने दी है, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं ऐसे भी कृष्ण कथा सुना सकता था, मैंने ये संस्था क्यों खोली। बहुत से आप देखोगे भारत में कथाकार हैं, किसी संस्था से जुड़े नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा सुना रहे हैं, और हाँ अच्छी कृष्ण कथा सुनाते हैं, वो लोग कलात्मक ढंग से सुनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण कथा सुनाने के लिए इतनी बड़ी संस्था क्यों खोली, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये कहना चाहते थे कि मैं कृष्ण कथा के साथ साथ एक ऐसी जीवन शैली देना चाहता हूं कि वो कृष्ण कथा की जो अग्नि है उसमें फिर से पानी न डाले। नहीं तो हम भारत में क्या देखते हैं, कथाएं तो बहुत चल रही हैं, कथाओं में जाकर हम सुनते तो बहुत हैं, परंतु उसके बाद अग्नि थोड़ी जलती भी है, परंतु फिर से जब जीवन शैली नहीं दी गई है तो पानी डाल डाल के बुझा देते हैं उसे। दैट इज द रीजन प्रभुपाद सेड, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट कृष्णा, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ लाइफ स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन कृष्ण कथा, एंड दैट इज हाउ द फायर विल ऑलवेज बी, विल नॉट जस्ट बी री इग्नाइटेड बट विल कॉन्स्टेंटली बी ऑन विद इन अवर हार्ट्स। और यही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का सातवां कारण है उनकी दिव्यता का, कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो हमारे यज्ञ कुंड की जो अग्नि है उसको पुनः प्रज्वलित करते हैं, और फिर हमारा उत्तरदायित्व है कि हम श्रवण कीर्तन और जो जीवन शैली दी गई है नवदा भक्ति की, उसके द्वारा हम इस अग्नि को बरकरार रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदी।
हरे कृष्णा।